सो हरे कृष्णा फॉलोइंग इज लेक्चर बाय हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ऑन श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो 24 चैप्टर वर्स नंबर 59 ऑन 26th ऑफ मई 2007 एंड द टॉपिक इज पावर ऑफ एसोसिएशन।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय श्लोक संख्या 59।
नायस्य चित्तं बहिरार्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद् भक्ति योगा अनुग्रहीता मञ्जसा मुनिर्विचिष्टे ननु तत्र ते गतिम्।
जी की आएंगे। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्णतया पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप कार्य आदि को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक समझ सकता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत में 3.25.25 में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हित कर्ण रसायन कथा तजोश नादशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति अनुकमिष्यति। शुद्ध भक्त की संगति मात्र से श्री भगवान के दिव्य नाम यश गुण तथा कार्य समझ में आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। केवल शुद्ध भक्त की संगति से मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। साधु संघ का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है। चेतो दर्पण मार्चनम, श्री कृष्ण के नाम जप से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है। जब मनुष्य भगवान की माया के वश में रहता है तो हृदय अशुद्ध रहता है और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं भगवान से किस प्रकार संबंधित है। इदम ही विश्वम भगवान वीर तेरा भागवत 1.5.20। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए सारा दृश्य जगत श्री भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसे वस्तुएं दूसरी तरह दिखती हैं। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है तो वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव की प्रगति पर अधिकार जताने के लिए प्रेरित करती है। जब भक्त श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करता रहता है, भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग का पालन करते हुए महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा शिव विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर परम प्रसन्न होती है और तब वह किसी भारी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। कपिल तथा सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं किंतु व्यासदेव को महामुनि कहा जाता है। भक्त को तभी मुनि कहते हैं जब वे श्री भगवान को शुद्धता पूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह निकला कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते समय अपराध ना हो पाने से शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपना दिव्य नाम रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं अंदर आ सकते हैं। तो इस अध्याय का नाम है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान, और भगवान शिव ने भगवान शिव पचेतस को स्तुति सुना रहे हैं। तो स्तुति में हम देख सकते कि भगवान शिव ने पहले भगवान के महिमा का गुणगान किया, उनके रूप का गुणगान किया, और अब पिछले कुछ श्लोकों से भगवान शिव उनकी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। पिछले श्लोक में 18वें श्लोक में शिव जी ने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के उद्गम तथा पापों को विनष्ट करने वाला है, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे परम शुद्ध हो चुके हैं और बद जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें। देखिए, भगवान शिव भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे आप अपने भक्तों की संगति दें और मेरी समझ से तो यही आपका आशीर्वाद होगा। यानी ये हमारे पास सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा कि हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। स्वयं शिव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से कि हमें आप अपने भक्तों का संग दो और यही आपका आशीर्वाद होगा। और कैसे भक्तों का संग दो वो आज के श्लोक में लिख रहे हैं। ना यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम, बोला कि ऐसे भक्तों का संग दो जिनका चित्त, ना यस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम।
बहिरर्थ का अर्थ है जो बाहरी, भगवान की बहिरंगा शक्ति, जिनका हृदय बहिरंगा शक्ति से भ्रमित ना हो। और ये बहिरंगा शक्ति किसकी, इसकी तुलना किसके किससे की गई है? तमो गुहायाम। ये जो भगवान का ये सृष्टि है, बहिरंगा भौतिक सृष्टि है, ये
तमो गुहायाम के समान है, यानी कि अंधकूप के समान है, अंधे कुएं के समान। शिव जी कह रहे हैं आपकी भौतिक सृष्टि है, तो मुझे आप ऐसे भक्तों का संग दो जो कि इस भगवान की बाहरी प्रकृति से, माया जगत से आकृष्ट, माया जगत से भ्रमित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विशुद्धम आविशद, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं। या फिर दूसरा अर्थ है जो कि शुद्ध सत्व में स्थित हैं, जो कि प्रकृति के तीन गुणों से बिल्कुल परे हैं, क्योंकि भगवान की ये जो बहिरंगा प्रकृति है त्रिगुणमयी है। तो अगर प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाएंगे तो इन तीनों गुणों का हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक विशुद्ध कैसे हुए ये? यद भक्ति योगा, क्योंकि भक्ति योग का पालन करके ये शुद्ध हुए हैं। और भक्ति योगा अनुग्रहित, और शिल प्रभुपाद कह रहे हैं अनुग्रहिता का मतलब है कि भक्ति देवी की कृपा से। जब भक्ति देवी की कृपा हो जाती है तो क्या होता है कि अंजसा मुनिर विचिष्टे ननु तत्र ते गतिम, कि बहुत ही प्रसन्नता से तत्र ते गतिम आपके कार्यकलाप, आपके नाम गुण रूप लीला को वो देख सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। तो भगवान शिव ऐसे भक्तों की संगति मांग रहे हैं आशीर्वाद के रूप में कि जो भगवान की बहिरंगा प्रकृति से, इस माया जगत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है और भक्ति देवी की विशेष अनुकंपा से वो भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक समझ चुके हैं, तो ऐसे भक्तों का संग शिव जी भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें दें। तो देखिए, इस श्लोक में भौतिक प्रकृति को, भौतिक जगत को तमो गुहायाम बताया गया है कि अंधे कुएं के समान है। हम सब जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, हम स्फुलिंग हैं, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। भगवान को बोया गया मायाधीश और हम हैं माया के अधीन। तो हम सब जब इस भौतिक जगत से आकृष्ट हो जाते हैं, कृष्ण बोलिया जीव अनादिर बही मुखे अतएव माया तारदे संसार दुखे, तो कृष्ण को भूल कर जब इस माया से आकृष्ट होते हैं तो हमें तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। और भगवान ने संसार की रचना ऐसी की है कि हम एक पल भी यहां बिना कर्म किए नहीं रह सकते, और प्रत्येक कर्म का हमें प्रतिक्रिया उठानी पड़ेगी, हर एक एक्शन का रिएक्शन हमें उठाना पड़ेगा। यानी कि एक एक क्षण जो यहां पे हम बिता रहे हैं वो बिल्कुल पापपूर्ण क्षण है, एक एक क्षण हम पाप किए जा रहे हैं। और ऐसा एक्शन और रिएक्शन, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का इतना जबरदस्त जंजाल हो गया है कि इस जंजाल से निकल पाना बिल्कुल असंभव है। तभी इसको अंधा कुआं कहा गया है। अंधा कुआं का अर्थ है जिसमें बिल्कुल प्रकाश नहीं है। इस संसार का जो वास्तविक स्थिति है वो अंधकारमय है। आध्यात्मिक जगत प्रकाशमय है, भौतिक जगत अंधकारमय है। तभी देखिए हमेशा किसी न किसी के प्रकाश के स्रोत्र की हमें आवश्यकता रहती है, दिन में सूर्य की, रात को चंद्रमा की, और फिर हमें ये कृत्रिम लाइटों की, क्योंकि ये इसकी वास्तविक स्थिति है अंधकार में, अज्ञानता में। तो इसको अंधा कुआं कहा गया है। इस कुएं में हम धसते ही जा रहे हैं, धसते ही जा रहे हैं, धसते ही जा रहे हैं, प्रतिक्षण पाप किए जा रहे हैं और धसते जा रहे हैं। फिर श्वास ले रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, जल पी रहे हैं तो पाप कर रहे हैं, शरीर में खुजली कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। कोई ऐसा पल नहीं है जिसमें हम बिना पाप के रह सके। तो कैसे इससे मुक्त होंगे? बिल्कुल असंभव है भाई। भगवान ने गीता के सातवें अध्याय में कहा है, देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत गया। इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, तभी हम सब नित्य बद हैं, बद गए हैं। यहाँ पे कभी हम ब्रह्मा बनते हैं, कभी इंद्र बनते हैं, कभी ऊंचे लोकों में रहते हैं, कभी पुरुष, कभी सुंदर स्त्री, कभी पाताल लोकों में, कभी नरकीय योनियों में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी सर, सब बन चुके हैं हम, और तरह तरह की योनियों में भटक रहे हैं। ये अंधा कुआं से निकल पाना असंभव है। तो कैसे इससे पार निकला जाए? तो श्रीमद् भागवतम के दसवें स्कंद में मुचुकुंद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जब आपकी बहुत विशेष कृपा होती है और हम किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो हमारे मोक्ष का द्वार खुल जाता है, हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी कृपा है इस अंधा कुआं जिससे कि निकल पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, उससे हम निकल पा रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी परिभाषा देते हैं कि नित्य बद जीव की क्या परिभाषा है। नित्य बद जीव की यह परिभाषा है कि नित्य काल से वो बद है, कब से बद है ये नहीं मालूम। बद का अर्थ हुआ प्रकृति के तीन गुणों से बंधा हुआ। कब से इस भौतिक जगत में सड़ रहा है पता नहीं, अनादिकाल से। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अनादिकाल तक सड़ता ही रहेगा, नित्य बद ही रहेगा। नहीं, नित्य बद जीव भी मुक्त हो सकता है भक्ति योग का पालन करके। तो हमें ऐसे नहीं सोचते कि हम तो नित्य बद हैं तो नित्य बद ही रहेंगे। नित्य बद भी मुक्त हो सकता है, और वो मुचुकुंद प्रार्थना में कह रहे हैं कि जब हम किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, उनकी संगत करते हैं, तब इस अंधा कुआं जिससे कि निकल पाना असंभव है, कल्पना कीजिए ऐसा कुआं जिसमें अंधकार ही अंधकार है और जिसमें हम गिरते ही जा रहे हैं नीचे की तरफ, और हमें नजर भी नहीं आ रहा कि इसका तल कहां पे है क्योंकि अंधकार है। तो ऐसे कुएं से भी निकल पाना संभव है अगर हम भक्तों के संपर्क में आते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी जी को शिक्षाएं दी तो क्या बोला, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। असंख्य जीव इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई किसी योनि में, कोई किसी योनि में, असंख्य जीव भटक रहे हैं। इन असंख्य जीवों में कौन सा ऐसा भाग्यवान जीव है जिसको कृष्ण की कृपा से गुरु का संग मिलता है और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, उसको भक्ति लता बीच मिलता है। तो हम सब को जानना चाहिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, असंख्य जीवात्माओं में से हमारे ऊपर ये विशेष कृपा हुई है कि हम जीवन के लक्ष्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है ये। 11वें स्कंद में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य देह भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है मनुष्य योनि, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ विशेष उपहार है। लेकिन उससे भी बड़ा उपहार है, उससे भी बड़ा भगवान की कृपा है भक्तों का संग मिलना। इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है, ये भगवान की कृपा की परिकाष्ठा है, टॉप मोस्ट मर्सी। इससे ऊंची और कोई कृपा नहीं हो सकती कि हम जैसे बद जीवों को शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, क्योंकि शुद्ध भक्तों को भगवान नीचे भेजते ही इसीलिए हैं। उनका भी अवतरण होता है कि हम सब जैसे बद जीवों का उद्धार किया जाए, इस अंधे कुएं से बाहर निकाला जाए, अन्यथा और कोई उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि इस दुखमय संसार से मुक्ति पाने का केवल एक ही तरीका है कि मेरी शरण में आ जाओ भक्ति योग के माध्यम से, और कोई उपाय नहीं है। तो हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं साधुओं की कृपा से। तो इसलिए हमें समझना होगा कि शिव जी भी स्वयं भक्तों का संग मांग रहे हैं, और ऐसे भक्तों का संग मांग रहे हैं जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है और जो इस अंधे कुएं रूपी बहिरंगा शक्ति से भगवान के मोहित नहीं होते। तो जब ये भक्ति योग का हम पालन करते हैं तो श्रील प्रभुपाल यहां लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की संगति से मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। आवाज आ रही है पीछे, बहुत धीमी लग रही है। ठीक है, ठीक है कि शुद्ध भक्ति के संगति से आश्चर्यजनक तरीके से हम प्रगति करते हैं। आश्चर्यजनक, स्वयं भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगो अपहो ही माम, किस भक्तों के संग में इतनी शक्ति है यथा वरुंधे कि केवल भक्तों के संग मात्र करने से मैं उन जीवों के नियंत्रण में आ जाता हूं, वो जीव मेरे को बांध लेते हैं। अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हम भगवान को बांध सकते हैं, भगवान को नियंत्रित कर सकते हैं। और भक्तों के संग से क्या होता है, सर संग अपो ही माम, कि हम सारे के सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो सकते हैं। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री गौर निताई जी की जय। तो जब हम किसी साधु के संपर्क में आते हैं तो साधु का अर्थ है कि जो हमारी भौतिक अज्ञानता को काटे। ओम अज्ञान तिमिरंदस से ज्ञानंजन शलाकया, हमारा जन्म तो इस अंधकार में हम जगत में हुआ है, लेकिन जो साधु हैं, जो गुरु हैं, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी आंखें खोलते हैं। और जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम पुनः अवलोकन करते हैं, दोबारा से देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं, और तब मुझे जीवन का लक्ष्य मालूम चलता है और तब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाता हूं या उसका प्रयास करता हूं। तो ये है साधु संघ का प्रभाव। इसलिए बोला गया है साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। हमारे जीवन की जितनी सिद्धियां हैं केवल साधु संघ से प्राप्त हो सकती हैं और किसी से नहीं। तो क्या होता है साधु के संगत करने से कि सर्व सिद्धि होए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा साधु के संगत से। तो देखिए, जो भक्ति योग है ये एक विज्ञान है, और रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि इस भक्ति के 9 स्तर हैं। आदो श्रद्धा, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये 9 इनकी स्थितियां हैं। तो प्रारंभ होता है श्रद्धा से। जो श्रद्धा भी हमें प्राप्त होती है वो भी हम जब इस ब्रह्मांड में तैनात जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं हम कुछ पुण्य कार्य कर देते हैं और कई बड़ी वैष्णवों की अहेतु की कृपा हो जाती है, वैष्णव की अहेतु की कृपा से हमारी कुछ सुकृतियां इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे समझ लीजिए कोई भी भौतिकता में लिप्त व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर उसको मिल गए, एक नंबर का विकर्मी व्यक्ति, पापी, सब तरह के पापों में लिप्त, और उसने किसी सड़क में चलते हुए वैष्णव के दर्शन भी कर लिए, कंठी डाली हुई, तिलक लगाया हुआ, उसको सुकृति मिल गई, और फिर उस वैष्णव ने आगे बोलकर उसको हरे कृष्णा बोल दिया और सुकृति मिल गई, और जबरदस्ती उसके हाथ में किताब पकड़ा दी और सुकृति मिल गई, उसके बाद वो किताब वापस फेंक भी दे तब भी कोई बात नहीं, उसने छू लिया किताब उसको सुकृति मिल गई। किसी ना किसी जन्म में वो भक्तों के संग में आएगा, उसकी श्रद्धा हो जाएगी। या फिर समझ लीजिए किसी को हमने प्रसाद दिया और उसने प्रसाद पा लिया तो कृष्ण उसके अंदर प्रवेश कर गए, और प्रसाद पाने के बाद उस पापी व्यक्ति ने यह भी कह दिया वाह बहुत अच्छा हलवा था, यह भी कह दिया, तो उसने किसी की भक्ति की प्रशंसा कर दी। अगर हम किसी की भक्ति की प्रशंसा भी कर देते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। पापी व्यक्ति ने बिन अनजाने में प्रशंसा कर दी, या वहां से निकला जबरदस्ती कोई उसको मंदिर में ले आया, मंदिर की उसने सफाई देखी। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर वालों को छोड़ने भी आते हैं लेकिन अंदर प्रवेश भी नहीं करते, अहंकार होता है या भगवान से कुछ नाराजगी होती है उनकी, बोले अंदर में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे लोगों से भी हम मिलते हैं तो एक बात तो कहते हैं कि आपके मंदिरों में सफाई बहुत अच्छी होती है। इतना कह दिया भक्ति में आगे बढ़ गए वो, क्योंकि मंदिर को हम साफ रख रहे हैं ये भी भक्ति है, तो उन्होंने भक्ति की प्रशंसा कर दी ना कि आपके मंदिर साफ होते हैं। इतना कह दिया उसने भक्ति में कुछ प्रगति कर ली, निश्चित रूप से कभी ना कभी उसकी श्रद्धा स्थिर होगी। तो इस ढंग से हमारी श्रद्धा बनती है कई कई जन्मों के सुकृतियां इकट्ठी होने के बाद। जब श्रद्धा आती है फिर हम साधु संघ में हमारी रुचि उत्पन्न होती है, और जब साधु संघ करते हैं तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि साधु संघ का क्या अर्थ है। बहुत सुंदर परिभाषा दी है साधु संघ के श्री प्रभुपाद ने। साधु संघ का अर्थ है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए भक्ति में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। तो अगर हम सब साधु संघ कर रहे हैं, बहुत वर्षों से कर रहे हैं साधु संघ, तो ये दो कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। क्या? कि हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में लगे रहना सदैव, और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। ये दो लक्षण है साधु संग करने वाले जीव के, कि वो सदैव हरे कृष्ण का कीर्तन करता है और कृष्ण के लिए ही कार्य करता है। तो हम अपना अवलोकन करें, क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा, इसके अलावा हम साधु संग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक यहाँ पे उदित किया है, सताम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवंती हितकन रसाय न कथा तजोश नादशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुकमिष्यति। ये कपिल देव माता देवती को सुना रहे हैं कि साधुओं के संगत से क्या प्रभाव होता है। सताम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवंती हितकन रसाय न कथा, कि जब साधुगण इकट्ठे होते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? भगवान के नाम गुण रूप और लीलाओं की। जब हम भगवान के नाम गुण रूप और लीलाओं की चर्चा करते हैं तो भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, तो स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, कि हे नारद मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्तन मेरा कीर्तन करते हैं। और जब ऐसा कीर्तन भक्त लोग करते हैं तो भगवान वहीं पे उपस्थित होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम साधुओं का संग कर रहे हैं और कृष्ण का संग भी साथ साथ कर रहे हैं। साधु संग और कृष्ण के संग में कोई अंतर ही नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग का अर्थ है सत का संग, यानी कि जब हम साधुओं की संगत में आते हैं तो हमेशा सत की चर्चा करनी चाहिए। साधुओं की संगत में भी आ गए लेकिन चर्चा असत की कर रहे हैं तो वो सत्संग नहीं कहलाएगा। अक्सर देखा गया कई बार भक्त लोग इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होकर चर्चा कुछ असत विषयों की हो रही है, कृष्ण कथा नहीं हो रही। बोले हमारी बहुत अच्छी पटती है, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। तो मित्रता का आधार क्या है, केंद्र क्या है? पजल्पा, यानी कि जो कृष्ण कथा नहीं ग्राम्य कथा, तो ये सत्संग नहीं कहलाएगा, इससे हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत यशा मिथो रीति मिथो दृष्टि निवृत मिथ आत्मना। परस्परा अनुकथनम पावनम भगवत यशा, पावनम भगवत यशा, जब हम भगवान का गुणगान करते हैं आपस में मिलकर तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। जब भक्तगण मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं, मिलकर हम प्रचार कार्य करते हैं, मिलकर हम कीर्तन करते हैं, मिलकर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मिलकर हम योजनाएं बनाते हैं कि कैसे कृष्ण के संदेश का प्रचार किया जाए, तो पावनम भगवत यशा, इससे हमारा बहुत शुद्धिकरण होता है। और इसके क्या प्रभाव होते हैं? मिथोरति, आपस में प्रेम उत्पन्न होता है। मिथोतुष्टि, सबको बड़ी संतुष्टि मिलती है। निवृत मिथ आत्मना, और इस इंद्र तृप्ति से हमारी रुचि कम हो जाती है, और यही सब हम चाहते हैं। तो ये है साधु संघ का प्रभाव कि आपस में मिलकर हमें भगवान का यशोगान करना है। तो उससे क्या होगा? भवंत हित करने रसायन कथा। तो जब साधु मिलकर भक्त लोग मिलकर भगवान की कथा करते हैं, भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, तो हित कर्म रसायन कथा, जो भगवान की ये कथा है, ये हृदय और कानों को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय लगेगी। रसायन, रसायन समझ लीजिए कि एक रसायन उसको भी कहते हैं, कोई आयुर्वेदिक टॉनिक होता है उसको रसायन कहते हैं, और आयुर्वेदिक टॉनिक वैसा होता है उसको रसायन कहते हैं जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। तो ये जो भगवान की कथा है, भगवान के नामों का और गुणों का यशोगान है, जो हम जैसे मृत व्यक्ति हैं, जो कि आध्यात्मिक रूप से मृत हैं, उनको भी जीवित कर देती है। और इतनी संतुष्टि मिलती है भक्तों को, इतनी संतुष्टि मिलती है कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे दो कान और एक जीवा बहुत कम पड़ रहे हैं, हजारों कान चाहिए, हजारों जीवाएं चाहिए, ताकि हम अनंत काल तक भगवान का गुणगान करते रहें। और पूर्ण रूप से संतुष्टि होती है। इस संसार में हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज से हमें संतुष्टि नहीं होती है ना,
तो यहाँ पे भगवत कथा में संतुष्टि का अर्थ ये नहीं है कि चलो प्रभु जी 45 मिनट का लेक्चर हो गया, बहुत अच्छा था, संतुष्ट हो गया, चलो उठो फटाफट और प्रसाद खाना है, चलो जी 16 माला का जप हो गया, संतुष्ट हो गए, ठीक हो गया। नहीं, संतुष्टि का अर्थ है कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और कथा चाहिए, और हरि नाम लेना है। ये है संतुष्टि का अर्थ कि इसके अलावा और किसी से भी हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। जब भगवान वृंदावन छोड़कर चले गए मथुरा, तो उद्धव को भगवान बता रहे हैं कि गोपियों के लिए और कोई आनंद का स्रोत नहीं रहा। हम जैसे लोगों के लिए तो आनंद के बहुत स्रोत हैं, बहुत। कुछ समय के लिए कृष्ण का संग करेंगे, 2 घंटे 1 घंटा कथा सुन लेंगे, उसके बाद बहुत है। दूसरे भी तो तरीके आनंद प्राप्त करने के, लेकिन भक्तों के लिए इसके अलावा आनंद का और कोई स्रोत है ही नहीं। यह है संतुष्टि का असली अर्थ कि हम कभी भी संतुष्ट ना हो, कभी भी हमारी प्यास बुझे ना, कि हमें और सुनना है और सुनना है। तो ये रुचि देखिए, ये अर्थ है भवंति हित कर्ण रसायना कथा, कि हृदय और कर्णों को इतना ये रुचिकर लगता है। और फिर क्या होगा, जोश नाद अशु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। और फिर हम अपवर्ग वर्तमानी यानी कि मोक्ष के रास्ते पर चल रहे हैं बहुत ही तीव्र गति से, और क्या होगा, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, हमारी श्रद्धा, हमारी रति यानी कि हमारी आसक्ति और फिर भक्ति बढ़ेगी। तो आचार्य गण व्याख्या करते हैं कि 3 बार ये शब्द क्यों बोला गया, श्रद्धा रति भक्ति। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि 3 तरह की भक्ति है भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या क्या, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो बोला गया श्रद्धा रति भक्ति, श्रद्धा इंगित कर रही है साधना भक्ति को, रति इंगित कर रही है भाव भक्ति को, और भक्ति इंगित कर रही है प्रेम भक्ति को। तो साधुओं की संगत से ही हम साधना भक्ति से भाव भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की तरफ ऐसे अग्रसर होंगे, अगर हम साधुओं का सही ढंग से संग करेंगे। तो केवल यही है, साधु संग साधु संग सर्व सिद्धि होए, सर्व सिद्धि, कृष्ण का प्रेम भी हमें मिल सकता है, मिलेगा केवल साधु संग से। साधु संग से ही भक्ति का जन्म होता है, साधु संग में ही भक्ति का पोषण होता है, तो हमें समझना चाहिए। और जब इस तरह से हम साधु संग करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध होगा तो इस पूरे से बड़े भौतिक ब्रह्मांड को हम भगवान की एक शक्ति के रूप में देखेंगे, भगवान से विलग नहीं देखेंगे। जो बद्ध जीव होते हैं वो इस भौतिक ब्रह्मांड को भगवान से अलग देखते हैं कि इसका और भगवान का कोई संबंध नहीं है। जब इसका और भगवान का कोई संबंध नहीं है तो ये किसके लिए है, मेरे लिए, मेरे भोग के लिए। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, जितने भी ग्रह हैं सबके सब मेरे भोग के लिए हैं, सबके सब। तभी देखिए वैज्ञानिक लोग प्रयास करें दूसरे ग्रहों में जा करने के लिए, बड़े वहां पे आपको अपार्टमेंट्स बना के देंगे, है ना, वो हमारे भोग के लिए, चंद्रमा भी हमारे भोग के लिए है। तो सारे के सारे ग्रहों को अपने भोग के लिए समझते हैं, लेकिन जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाएंगे, हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखेंगे। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो हृदय कोमल हो जाता है, और जब हृदय कोमल हो जाता है तो हृदय मजबूत हो जाता है। ये बात समझनी पड़ेगी, हृदय मजबूत होता है, हृदय दुर्बलता हमारा एक अनर्थ है, और हृदय मजबूत होना भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण है। हृदय मजबूत होने का अर्थ है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तरह तरह के आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगे, तरह तरह के उतार चढ़ाव से हम भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा हृदय मजबूत है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, वन नीड्स अ स्ट्रांग हार्ट टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को जानने के लिए मजबूत हृदय चाहिए। हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ तनाव आ जाता है तो हमारा माला में मन नहीं लगता, भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता, और थोड़ा सा कुछ सुख आ जाता है तब भी हम भ्रमित होते हैं। उस समय एक भक्त बता रहे थे कि चैतन्य भागवत की टीका में भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि हम सबके जीवन में सुख और दुख का बहुत ही सशक्त प्रकार आक्रमण होता रहता है, सुख का भी आक्रमण होता है, दुख का भी आक्रमण होता है, और बहुत शक्तिशाली आक्रमण होता है। तो ऐसे आक्रमण हम सह नहीं सकते और भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन हम सही ढंग से साधुओं का संग करेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम हरेक जितने भी इस संसार में वस्तुएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, सब में कृष्ण का हाथ देखेंगे, सब में कृष्ण को देखेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे और हमारा हृदय मजबूत हो जाएगा। तो ये है साधु संघ का प्रभाव, और तब हमें भक्ति देवी की कृपा मिलेगी। लिखा जा रहा है कि भक्ति देवी की कृपा मिलेगी और बड़ी आसानी से हम भगवान के दिव्य नाम गुण रूप लीलाएं समझ पाएंगे। जब हम साधुओं का संग करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि भगवान का एक व्यक्तिगत रूप है। निर्विशेषवादियों को संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अकेले बैठ के ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, शुष्क ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, लेकिन जो मानते हैं कि भगवान का एक रूप है तो उनको तो असंग की आवश्यकता है ही है। यानी कि आप इसका मतलब यह हुआ कि हम सब भक्ति आंदोलन में जुड़े हैं लेकिन हम साधु संघ की अगर महत्वता को नहीं समझ रहे तो दूसरे अर्थों में हम भगवान के साकार रूप की अवहेलना कर रहे हैं, हम भगवान के साकार रूप को नहीं मान रहे हैं। अगर भगवान की एक पर्सनल फॉर्म है तो हमें संघ की आवश्यकता है, और साधुओं के संगत में रहकर भी एक कनिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी भी जब उत्तम अधिकारी का संग करता है तो उसको आभास होता है हाँ कि कृष्ण है, राधा रानी है, भगवान का धाम है, भगवान वहां पे लीलाएं कर रहे हैं। आभास होता है नहीं होता, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि से ऐसे कण निकलते हैं जिससे हमें इनका आभास होता है। तो ये शक्ति है साधु संघ में। अब प्रश्न ये उठ जाता है कि शिव जी ऐसे भक्तों का संग मांग रहे हैं जो कि बड़ी आसानी से, जिनके ऊपर भक्ति देवी की कृपा हो गई और बड़ी आसानी से जिन्होंने भगवान की लीलाओं को समझ लिया और जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रभावित नहीं हो रहे, अगर हम देखें तो निश्चित रूप से भगवान शिव हम जैसे भक्तों का संग नहीं मांग रहे, क्योंकि हमारे अंदर ये दो लक्षण नहीं है प्रकट। हमारे लिए भगवान की लीलाएं नाम अभी भी बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि ये समझ गए तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। कृष्ण हमारे लिए अभी भी रहस्य हैं, भक्त भगवान के भक्त भी हमारे लिए बहुत ही रहस्यमय हैं, और दूसरा भौतिक प्रकृति में तो हम बिल्कुल लिप्त हैं, थोड़े से उतार चढ़ाव से हम विचलित हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान हमारे भक्त जैसे भक्तों का संग नहीं मांग रहे। तो विधि तो यही है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया। तो क्या गलती हम कर रहे हैं कि हमारे पर भक्ति देवी की कृपा नहीं हो रही, यानी कि हमें साधुओं का संग करना नहीं आ रहा। श्रीला माधवाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर आप साधुओं का संग करना नहीं सीखे और साधुओं के प्रति अपराध करते रहे तो निश्चित रूप से भगवान ऐसे भक्तों के मार्ग में स्वयं रोड़े अटकाते हैं कि ये निश्चित धाम वापस ना आ पाए। हमें सीखना पड़ेगा कि साधुओं का संग कैसे करना है। बस श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के अंत के तात्पर्य में भक्तगण बता रहे हैं, एक ही लाइन बता रहे हैं कि केवल यही सीख लो कि भक्तों का संग कैसे करना है, जीवन की परम सिद्धि को हम प्राप्त कर लेंगे। बस यही सीख लो, क्योंकि अगर हमने सही ढंग से साधुओं का संग करना सीख लिया अपने आप सब कुछ दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा और भक्ति में अपने आप प्रगति करेंगे। और यही बताया गया है कि हो सकता है कोई व्यक्ति भौतिक शिक्षा में या आध्यात्मिक शिक्षा में बहुत निपुण हो लेकिन अगर वो साधुओं का संग सही ढंग से नहीं कर रहा तो वो अंधकार में जगत में प्रवेश करेगा, यानी कि इस अंधे कुएं से निकलने का और कोई उपाय नहीं है। केवल साधु संघ के माध्यम से ही हम इस अंधे कुएं से बाहर निकल सकते हैं। तो अक्सर अगर हम जब भक्ति योगी बनना चाहते हैं तो भक्ति योगी बनने से पहले हमें भक्त योगी बनना पड़ेगा, भक्तों के साथ संबंधों को जोड़ना पड़ेगा। बिना भक्त योगी बने भक्ति योगी नहीं बन सकते हम, भक्तों की महत्वता को समझना पड़ेगा। भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि मुझे शिव से, ब्रह्मा से, संकर्षण से, लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय तुम हो। आप कह सकते हैं उद्धव तो बहुत ही ऊंचे भक्त थे, भगवान उनके लिए तो कहेंगे ही कहेंगे, हम जैसे या जो साधारण भक्त हमारे दिख रहे हैं ये थोड़ी भगवान को प्रिय होंगे, उत्तम अधिकारी भगवान को प्रिय होंगे। भगवान आदि पुराण में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ध्यान पूर्वक सुनो, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतवा तेषा नाम सदा पार्थ हृदये वर्तते मम, कि चाहे कोई श्रद्धा से या अवहेलना से मेरा नाम लेता है तेषा नाम सदा पार्थ हृदये वर्तते मम, उसका नाम हमेशा मेरे हृदय में रहता है। कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में अगर कृष्ण का नाम ले रहा है कृष्ण उसको याद रखते हैं, चाहे वो शुद्धता से ले रहा है चाहे अवहेलना करके ले रहा है। कृष्ण इतने कृपालु हैं, कृष्ण इतने कृतज्ञ हैं, एक एक जीव जिसकी जीवा पे कृष्ण का नाम आ रहा है, कृष्ण उसको जानते हैं, उसका नाम हृदय में रखते हैं कृष्ण, वो इतना प्रिय है कृष्ण को। तो हम कहते हैं होने दो कृष्ण को प्रिय, मुझे तो प्रिय नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है, ये ऐसा है ऐसा 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 ऐसे मुझे प्रिय नहीं है। तो जब तक ये भाव रहेंगे, हम मनोकल्पना से चल रहे हैं, मन के कारण, मन के प्रभाव में चल रहे हैं। तो भक्ति मनोकल्पना का विषय नहीं है, भक्ति एक विज्ञान है। कृष्ण से एकत्व करना पड़ेगा, जो कृष्ण की इच्छा है वही हमारी इच्छा होनी चाहिए, जिसको कृष्ण से प्रेम है उसी से हमें प्रेम होना चाहिए। अगर कृष्ण को ऐसे भक्त प्रिय हैं जो कि श्रद्धा से या अवहेलना करके भी नाम ले रहे हैं, तो हमें भी वो भक्त निश्चित रूप से प्रिय होना चाहिए। तो हम लोगों की आदत बन गई है कि मन से और वाणी से हम भक्तों के बारे में बहुत ही गलत सोचते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हमारी नेचर बन गई है, नेचर, पता भी नहीं चलता कि अपराध कर रहे हैं। जिस ढंग से श्वास लेते हैं उसी ढंग से अपराध करते हैं, श्वास पे हम अपराध कर रहे हैं, पता भी नहीं चलता। सोचना तो बहुत दूर की, मन से तो बहुत ही अपराध कर रहे हैं निरंतर, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, उसमें ये है, उसमें ये है। बोलेंगे कुछ नहीं, सोचेंगे तो ऐसे कि बहुत ऐसा समझते हैं, ये वैसे समझते हैं, ये क्या है। मन से तो हो ही रहा है और हमें लगता है ठीक ही चल रहा है, और वाणी से भी बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचते क्या बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं, कोई सोचना नहीं। हमारी प्रकृति बन गई है। तो कैसे हमारे ऊपर भक्ति देवी कृपा करेंगी? श्रील प्रभुपाद साफ साफ लिख रहे हैं कि भक्ति देवी तभी कृपा करेगी जब हम अपराधों से बचेंगे। जब तक अपराधों से नहीं बचेंगे भक्ति देवी कृपा नहीं करेगी, जब तक भक्ति देवी कृपा नहीं करेगी इस अंधे कुएं से बाहर नहीं जाएंगे। ब्रह्मांड में कई बारी भटकने के बाद ये भक्ति लता बीज हमें प्राप्त हुआ है, इसको संभाल के रखना चाहिए हमें। हाथ से निकल गया तो फिर से अंधे कुएं में चले जाएंगे, एक ही मौका है बस। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमने इस भक्ति लता बीज का पोषण करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें साधुओं का संग करना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को। ये एक विज्ञान है, चाहे मुझे पसंद है या नहीं, अगर विज्ञान है कि इनको पसंद करना चाहिए तो करूंगा। तो कैसे पसंद करना चाहिए? जब भी हम भक्तों का संग करें, चाहे वो त्रुटियों से भरा पड़ा है, असंख्य सूची बना लो आप उसके त्रुटियों की, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें गुण है, तभी तो भक्ति में है, कृष्ण का नाम तो ले रहा है ना। तो हमें हरेक भक्ति जब संगत करें तो उसकी प्रशंसा करें, उसके अंदर गुणों का अवलोकन करें, और किसी एक गुण को भी दिखाई दे जाए, उस एक गुण को पकड़ के हम उसका दास बन जाना चाहिए। अरे ये भक्त कीर्तन बहुत अच्छा करता है, ये भक्त गाता बहुत अच्छा है, ये भक्त प्रसाद बहुत अच्छा बनाता है, सफाई बहुत अच्छा करता है, कुछ ना कुछ गुण तो होगा तभी वो प्रभुवाद के आंदोलन में जुड़ा है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उस गुण को पकड़ के हमें उसका दास बन जाना चाहिए, बस खूब प्रशंसा करनी चाहिए उसकी, और जो उसके अवगुण दिखाई दे रहे हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। अपने भले के लिए कर रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे। ये विज्ञान को समझने का हमें प्रयास करना है, अन्यथा युग युग बीत जाएंगे, जन्म जन्म बीत जाएंगे, साधुओं का संग प्राप्त हो रहा है, विशेष कृपा अनुकंपा की परिकाष्ठा, इससे ऊपर और कोई कृपा नहीं, और क्या देंगे भगवान हमें, लेकिन फिर भी हम समझे नहीं तो हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। तो इस ढंग से हमें भक्तों का संग करना है। दूसरा, यहां पर शब्द आया सताम। श्री प्रभुपाद सताम शब्द का बहुत ही अच्छा अनुवाद कर रहे हैं, कोई जानते हैं क्या किया श्री अग्रवाल ने? बोले ट्रूथफुल डिवोटीज। सताम का अर्थ है सच्चे भक्त। बोले कोई झूठे भक्त भी होते हैं क्या? लेकिन श्री प्रभुपाद ने लिखा है सच्चे भक्त। सच्चे भक्त का अर्थ यह हुआ कि हम भक्तों का जब संग करें तो बहुत पारदर्शी रहें, पारदर्शी, जो हृदय में है वही दिखाएं। एक बार मैं लेक्चर पढ़ रहा था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी का, इतनी सुंदर उन्होंने बात की। बोले मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, किसी ना किसी का इसको संग चाहिए, या तो भक्तों का संग करेगा या असाधुओं का संग करेगा। तो बोला संग का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है हृदय को देना, शेयरिंग ऑफ हार्ट, गिविंग ऑफ हार्ट। जब तक हम हृदय नहीं देंगे हम भक्ति नहीं कर सकते। ये हृदय हमें भक्तों को देना है, भक्तों से इस अपने हृदय की बातों को शेयर करना है। बोले कुछ कर लेंगे, कुछ बचा के रखेंगे, नहीं, हम सब इस संसार में ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसको हम प्रेम कर सकें, पूरा का पूरा प्रेम उस पर न्यौछावर कर सकें, बड़े हृदय से उसकी हम सेवा कर सकें, ढूंढ रहे हैं ना। तभी पद जीव विवाह करता है, बोले जो मेरी पत्नी आएगी या पति आएगा उसको सब कुछ अर्पण कर देंगे, पूरे हृदय की बातें हृदय उसको दे देंगे और खूब उसकी सेवा करेंगे और करते भी हैं। लेकिन कुछ टाइम में मालूम चल जाता है कि वापस में कुछ में नहीं मिला, केवल कुंठा। तो ये हमारी नेचर है, प्रकृति है, स्वभाव है। तो हृदय तो देना ही पड़ेगा, जब तक हम हृदय नहीं देंगे हम विनम्र नहीं बनेंगे, क्योंकि हृदय देकर ही हम सेवा कर पाएंगे। और तब हम जितने भी हमारे ऊपर आवरण हैं, क्योंकि संसार में जब हम जीते हैं जीवन तो दोगला जीवन जी रहे हैं, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, कुछ तो ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास मैं बिल्कुल स्वाभाविक रूप से रहूं, कोई भी कृत्रिम व्यवहार ना हो, जैसा हूं वैसा। तो उसके लिए अपना हृदय देना पड़ेगा, है ना। तो ये है ट्रुथफुल डिवोटीज, सच्चे भक्त की सच्चाई, भक्तों के संबंध में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि भक्तों के संबंध में अगर आप ईमानदार रहे तो आपकी आध्यात्मिक सफलता गारंटेड है। कुछ नहीं करना, मेरी साधना ठीक नहीं है, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है, ना मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, ना मुझे श्लोक याद है, कुछ नहीं आता मुझे, बहुत ढीला हूं मैं, लेकिन सच्चा भक्त हूं, सच्चाई का सहारा ले रहा हूं, सच्चाई से प्रयास कर रहा हूं, तो मेरे आध्यात्मिक सफलता गारंटेड है, आई गो बैक टू गॉड है। ये देखिए, ये विज्ञान है, भक्ति देवी कितनी कृपा कर रही है हमारे पर। दूसरा, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, यहां बोला कि भक्ति देवी, समय कम है तो मैं थोड़ा तेजी से पढ़ूंगा, समय सब्जेक्ट बहुत विशाल है। बोला गया कि भक्ति देवी कृपा तभी करेंगी जबकि हम अपराधों से बचेंगे। तो अपराध चार तरह के होते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध और जीव अपराध, साधारण जीवों के प्रति। नाम अपराध, सुबह सुबह हम रोज पढ़ते हैं और तोते की तरह रट्टा लगाते हैं और अंत में बोलते हैं ध्यान पूर्वक जप ना करना भी अपराध है। तो आचार्यगण बताते हैं केवल इसी अपराध को ठीक कर लें तो बाकी 10 अपराध से हम बच जाएंगे, कि ध्यान पूर्वक जप कर लें। तो अगर हम सताम भक्त बनना चाहते हैं, सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, तो जब हम जप करने बैठे तो केवल जप करें, तभी हम सताम कहलाएंगे। जप करते समय कुछ और योजनाएं ना बनाएं, तो बोले ये तो संभव ही नहीं है, हमारा प्रयास तो ये होता है लेकिन मन इधर उधर भागता है। तो बोल रहे हैं अभ्यासेन च योगेन वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास से और वैराग्य से हम मन को काबू कर सकते हैं। बार बार अगर मन भटक रहा है, आपका प्रयास होना चाहिए कि मन को खींच के लाओ, मन के साथ मैं ना भाग जाऊं, खींच के लाऊं, अभ्यास करो। कहा गया है कि कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस और डिटैचमेंट कृष्ण को आकर्षित करती है, कृष्ण हमारे प्रयास देख रहे हैं। एक भौतिक जगत में एक व्यक्ति ने बताया था कि सफलता की क्या परिभाषा है। तो बोले सफलता की परिभाषा यह है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हो और बार बार आप फेल हो रहे हो, प्रयास कर रहे हो फेल हो रहे हो, करते रहो, देन यू आर सक्सेसफुल। बस मन भाग रहा है पकड़ के लाओ, प्रयास करते रहो, कृष्ण हमारे प्रयासों से आकर्षित हो जाएंगे। कैसे आकर्षित नहीं होंगे, दामोदर लीला में हम देखते हैं, दामोदर लीला में कृष्ण ने चाहा कि मैं मक्खन चुरा के खुद भी खाऊंगा और बानरों को बांटूंगा, मित्रों को बांटूंगा, कृष्ण की ये इच्छा थी। लेकिन उनके भक्त यशोदा मैया की इच्छा थी कि नहीं, मैंने कृष्ण को पकड़ना है, कृष्ण को बांधना है। तो कृष्ण की शक्तियां हैं, पराश शक्ति विधिवत, बहुत शक्तियां कृष्ण की। तो एक शक्ति है सत्य संकल्प शक्ति, कृष्ण ने ठान लिया कि मैंने इच्छा पूरी करनी है, सत्य संकल्प, और निश्चित रूप से पूरी होगी। कृष्ण ने इच्छा की कि मैं माखन चुराऊंगा, माखन चुरा लिया, अपने मित्रों और वानरों को बांटूंगा, तो बांटूंगा, ये उनकी इच्छा है। दूसरी कृष्ण की विभूति शक्ति है, जो विभूति शक्ति क्या है कि माता यशोदा उनको बार बार रस्सी से बांध रही है फिर भी रस्सी छोटी पड़ रही है, छोटा सा उदर है बालक कृष्ण का फिर भी रस्सी छोटी पड़ रही है, ये विभूति शक्ति है। विभूति शक्ति सत्य संकल्प शक्ति को पूरा करने में मदद कर रही है कि कृष्ण की इच्छा पूरी करनी है, तो कृष्ण अपनी विभूतियां दिखा रहे हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है यशोदा मैया वो प्रयास नहीं छोड़ रहे, लगी हुई है प्रयास कर रहे, कैसे नहीं बंधेगा कृष्ण। एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, सारे गांव की जितनी रस्सी थी सब ले ली, पड़ोस की जितनी रस्सी थी सब लगा ली, पसीने पसीने हो गए, थक गए, प्रयास 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 प्रयास। तो कृष्ण को अपनी इच्छा को त्यागना पड़ा, भक्त और कृष्ण के बीच में स्पर्धा चल रही है, कॉम्पिटिशन चल रहा है, लेकिन कृष्ण हार गए, कृष्ण को हारना ही पड़ा। और जब भी कृष्ण देखेंगे हम इस ढंग से प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण बंध जाएंगे। भौतिक जगत में कहा जाता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लेकिन भक्ति में गॉड प्रपोजेस मैन डिवोटी डिस्पोजेस। भगवान ने प्रपोज किया कि मैं माखन चुराना चाहता हूं, यशोदा मैं गया, नो आई डोंट सैंक्शन, आपको बंधना पड़ेगा। कैसे? लगातार प्रयास से। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना कि इतने साल हो गए मन काबू में नहीं हो रहा, प्रयास करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। यशोदा मैया के प्रयास को देख के भगवान ने सोचा बंध जाता हूं, हमारे प्रयासों को देखकर भी कृष्ण सोचेंगे चलो बंध जाता हूं, नाच लेता हूं इस बद जीवती हुई जीवा पर, तो फिर दिव्य नाम प्रकट होगा। तो इस ढंग से नाम अपराध से हम बच सकते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें, ध्यान पूर्वक। सारे के सारे हमारे आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है ध्यान पूर्वक जप करना। कृपया करके हमें हैरानी होती है कि हम इतने कई कई भक्त हैं, इतने इतने सालों से जुड़े हुए हैं, अगर हम जप सुने तो हम 16 शब्द भी नहीं बोलते, किसका मंत्र बोल रहे हो, किसको पुकार रहे हो यह भी नहीं पता हमें, और जब कर रहे हैं कई सालों से हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक है ही नहीं, तो फिर अपराध अपने आप सारे होंगे। 16 शब्द हम पूरे नहीं बोलते, वो भी सही ढंग से उच्चारण नहीं करते, तो ये तो कम से कम है। भावों में जाना, मूड में चले जाना, लीलाओं का स्मरण करना, ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। अरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये तो सही बोलने हिंदुस्तानी है हम, कोई फिरंगी होते विदेशी होते कि हरे नहीं बोला जा रहा, कृष्ण नहीं बोला जा रहा। सौभाग्य है हमारा कि कृष्ण राम हरे तो बोल ही सकते हैं, तो ऐसी क्या जल्दी है कि हरे हरे रे 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 राम 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 राम, क्या कुछ बोल रहे हैं, कृष्ण 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 सब कुछ बोला जा सकता है। कहीं जब ऐसे होता है जैसे हरे कृष्ण 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 कृष्ण, कहीं उसके ऊपर क्लास नहीं जा सकते, मतलब कि किसको पुकार रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, कहां है वो, कुछ तो सोच लो क्या बोल क्या रहे हो। तो ऐसे जब हम करेंगे भक्ति देवी कैसे कृपा करेगी, कैसे हमारे भौतिक आकर्षण समाप्त होंगे, कैसे भगवान के विग्रह हमें भगवान लगेंगे, पत्थर लगेंगे, क्योंकि भक्ति देवी कृपा ही नहीं करेंगे। नाम अपराध कर रहे हो, कोई रुचि नहीं भगवान, कोई मतलब ही नहीं। तो बहुत सावधानी पूर्वक नाम अपराधों से बचना चाहिए, सावधानी पूर्वक जप करें, सेवा अपराध से बचे। सेवा अपराध भक्ति सामर्थ्य सिंधु में 64 बताए गए हैं, तो उसका एक अलग ही क्लास लिया जा सकता है। लेकिन जो कुछ मुख्य मुख्य अपराध हैं जो कई बार हम कर बैठते हैं, कि भगवान के विग्रह के सामने हम दूसरे को प्रणाम कर देते हैं, भगवान के विग्रह के सामने बैठे बैठे थक गए तो पांव यूं कर दिए, भगवान को अपने चरणों के दर्शन दे रहे हैं कि मेरे चरण कमलों के दर्शन करो, आप भी अपने चरण कमल दिखाते हो, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप मुझे अपने चरण कमल दिखाओ मैं आपको अपने चरण कमल दिखाऊंगा। अगर कुछ तकलीफ है कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते और हमें ऐसे करना भी पड़ रहा है, तो अपने चरणों को हम कवर कर लें, भगवान के सामने बैठे हैं तो चरण कवर होने चाहिए, भगवान को हम चरण ना दिखाएं, है ना। और भगवान के विग्रह के सामने हमें और कोई बातें ना करें, और प्रभु जी बिजनेस कैसे चल रहा है, और क्या हुआ, उधर उधर की बातें कर रहे हैं, है? और भगवान के विग्रह के सामने ही फोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे, हाँ हाँ ले लो ले लो, हाँ बेच दो बेच दो, कर लो है? अभी आ रहा हूं ये जा रहा हूं वो सब चल रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं भगवान के विग्रह के सामने, जोर से जवाई ले रहे हैं, क्लास बहुत बोरिंग हो गया करके जवाई ले रहे हैं विग्रह के सामने, है? मतलब कि कोई पता ही नहीं कौन खड़ा है सामने, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सामने खड़े हो तो कितने हम डरे हुए दबे हुए खड़े रहेंगे, ऐसे कोई गलती ना हो जाए, और ये सामने भगवान खड़े हैं, कुछ भी कर लेंगे, जोर जोर से हंस लेंगे, जोर जोर से किसी को भी डांट देंगे, किसी को भी ठीक कर देंगे, ऐसा मत करो ऐसा करो, भगवान है के सामने हमें बहुत ही श्रद्धा से और सेवा के भाव से रहना चाहिए, है ना। तो ये कुछ अपराध हैं, सेवा अपराध, तो भक्ति समाज सिंधु में पढ़ना चाहिए, हम सब पुराने भक्त हैं, जब भी हम आए हाथ पैर धो के आए, कुल्ला करके आए, और खाली हाथ ना आए, भगवान के लिए जब भी आए कुछ फूल कुछ फल उपहार लेकर आए। तो इस ढंग से ये 64 अपराध बताए गए हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। वैष्णव अपराध, इसकी चर्चा तो कई बार कर चुके हैं। जीव अपराध, जीव अपराध का अर्थ है कि साधारण जीवों के प्रति अपराध। अब तो मैं भक्त बन गया हूं, 16 माला का जप करता हूं, 4 नियमों का पालन करता हूं, ये निकृष्ट जीव पशु तुल्य अंधे कुएं पड़ा हुआ नीचे की तरफ गिरता जा रहा है ना, ये ले किताब और पढ़ और अपना जीवन सुधार, है ना। उसको हम भाषण दे रहे हैं, कोई आ जाए हाथ में लग जाए, सारा का सारा अपना गुस्सा उस पर उतार दे, क्योंकि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, पूरा अधिकार है उसको डांटने का, फटकारने का, है ना। साधारण जीवों को भी धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उनके साथ, उनके भावों की कोई कदर नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को हमने उद्विग्न नहीं करना, किसी भी जीव को। श्रील प्रभुपाद जब थे, उन्होंने देखा कि छोटा सा कीड़ा नीचे पड़ा हुआ है, तुरंत उन्होंने श्रोता की प्रभु को बुलाया, उन्होंने देखो छोटा सा कीड़ा, इसको एक प्रसादी फूल पे रख लो, इसको कुछ भोजन दे दो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद एक जीव को, छोटे कीड़े को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। तो हम लोग किसी भी जीव को, ऑफिस में, बिजनेस सर्कल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बोल दें, कुछ भी किसी को कर दें, बिजनेस में कोई व्यक्ति डीलिंग कर रहा है, उसको टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, उसको हैरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, या घर में ही है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, पति भी भक्त हैं, पत्नी भी भक्त हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भक्त हैं, है तो मेरी पत्नी ही है, है तो मेरे पति ही है, बच्चा भी भक्त है, नहीं है तो मेरा बच्चा ही, तो हम उनको डीलिंग में देखते नहीं कि वैष्णव है, उनको साधारण अपने परिवार की तरह लेते हैं कि ये तो मेरा हक है। अरे कितने साल आप पति रहोगे उनके, 20, 30, 40, 50, 60, असली पति तो कृष्ण ही है, थोड़े साल के लिए अधिकार बन गया तो बस मैं हो गया राजा। तो ये जीव अपराध है, वैष्णव अपराध। अगर पति भी पत्नी दोनों वैष्णव है तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, अगर वैष्णव नहीं है तब भी सावधान रहना चाहिए, जीव तो है ना, कृष्ण के अंश है। याद रखो आप शरीर से डीलिंग नहीं कर रहे हो, आत्मा से डीलिंग कर रहे हो, ये डीलिंग विद द सोल्स, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो प्रत्येक जीव के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, बहुत ही आदर पूर्वक। तो इस ढंग से अगर हम देखेंगे, जब इन सारे अपराधों से हम बचेंगे और सावधानी पूर्वक प्रयास करेंगे तो भक्ति देवी प्रसन्न होंगी। क्यों नहीं हो रही भक्ति देवी हमसे प्रसन्न? क्योंकि हम उनको प्रसन्न करना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो मन में आया वो करे। श्री प्रभुपाद कह रहे कि भक्त को मुनि होना चाहिए, मुनि का मतलब विचारवान, विचारवान का अर्थ है हमें विचार करना चाहिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, भक्तों ने, षड गोस्वामी ने, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र क्या रहा है, उनके ऊपर कठिनाइयां नहीं आई क्या, आई है तो उन्होंने कैसे सामना किया है, शास्त्रों में क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं, इस पे विचार करना चाहिए। और अभक्त क्या होते हैं, वो मानसिक कल्पना, तो हमसे मानसिक कल्पनाओं का सहारा लेते हैं कि ये भक्त वैसा है, ये भक्त मेरे बारे में गलत सोचता है, ये भक्त मुझसे द्वेष करता है, ये वैसा है, ऐसे हम मानसिक कल्पनाएं बना रहे हैं। लेकिन हमें विचारवान होना चाहिए, हमारा हर कार्य गुरु साधु शास्त्र, बस कि मेरे लिए क्या आदेश है मैं वो करूं, बस विचारवान, इस पे विचार करना चाहिए, गुरु के क्या आदेश हैं, शास्त्रों के क्या आदेश हैं, साधुओं के व्यक्तिगत जीवन के क्या उदाहरण है, इस पे विचार करके जीवन जीना चाहिए, ना कि मानसिक कल्पनाओं से। मानसिक कल्पनाओं में रहेंगे तो नरकों में जाएंगे, अंधे कुएं में ही पड़े रहेंगे। तो ये जो इतना सुनहरी अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड को, अंधे कुएं से हम बाहर निकल सकते हैं साधुओं का सही ढंग से संग करके, तो क्यों खोएं, कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए, भक्तों से घनिष्ठ मित्रता करते हुए, वो हमें आगे बढ़ना चाहिए और सारे तरह के अपराधों से बचना चाहिए। प्रत्येक भक्त बहुत ही विशेष है, एक एक जीव जो कृष्ण कौशन साधना में जुड़ा है इज अ वेरी 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 स्पेशल सोल एंड वेरी 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 डियर टू कृष्ण, वेरी वेरी डियर। तो कृष्ण को प्रिय है, बहुत विशेष है। तो आप कौन हो, क्या मत है, क्या आपका औकात क्या है हमारे, तुच्छ से जीव, बाल के अगर के 10,000 में ऐसे और अहंकार इतना बड़ा महान, मुझे पसंद नहीं है। अरे क्या आपके मत की वैल्यू क्या है, तभी भगवान इतने मतलब बार बार कहते हैं मेरा मत सुनो, मेरा मत सुनो, मेरा मत सुनो, जिद्दी व्यक्तियों मेरा मत सुनो, अपना मत मत मानो, मेरा मत मानो, मेरे मत को सुनो, अपना मत मत सुनो, मत 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 अपना मत मत सुनो, मेरा मत सुनो। तो भगवान के मत को सुने, गुरुओं के मत को सुने, साधुओं के मत को सुने, बस। तो फिर बड़ी आसानी से अंजसा, बड़ी आसानी से भगवान का नाम हम समझ पाएंगे, भगवान के रूप को समझ पाएंगे, भगवान की लीलाओं को समझेंगे। अंजसा कह रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है, कोई घनिष्ठ तपस्याएं नहीं करनी, कोई बड़े बड़े वैदिक शास्त्रों को नहीं पढ़ना, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने, बस साधुओं के संग को अच्छे ढंग से करना है, सही दृष्टिकोण से करना है। अंजसा भक्ति देवी प्रसन्न हो जाएंगी, और भक्ति देवी प्रसन्न हो गई तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हम सब कुछ समझ पाएंगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए कितना सरल है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी?
प्रभु जी पूरा लेक्चर ही प्रयास तो यही किया है। देखिए संघ करने का अर्थ है जैसे अच्छा आपने लेक्चर में सुन लिया है ना, संघ का ये अर्थ है कि हमने जो सुना है इसके मनन करें, है ना, इसको सुन के यहीं छाड़ ना दें इसको, है ना, इस पर मनन करें और इसको मनन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, है ना। तो साधुओं के मत को महत्व दें, क्या सुना है, शास्त्रों की बात सुनी है तो उसको अपने जीवन में उतारें, उसका प्रयास करें, है ना। यस वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रभु जी का प्रश्न है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप तो कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि किसी वरिष्ठ भक्त से संबंधित रहे बिना से कर। हमारे प्रयास कहते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं। बहुत जरूरी है प्रभु, इसके बिना भक्ति है नहीं। मैंने बोला ना भक्ति का अर्थ है हृदय को देना, हृदय को संभाल के नहीं रखना। प्रभु जी भक्ति स्नान महाराज को गौर किशोरदास बाबा जी ने कितनी बार इग्नोर किया, बोले सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या करूंगा, इस बार स्वीकार नहीं किया। नरोत्तम दास ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी जी के मल को साफ करते रहे, कैसे नहीं कृपा करोगे, कैसे नहीं कृपा करोगे, है ना। तो हमारे प्रयास रहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। भक्त हैं वो भी, जो भी वरिष्ठ भक्त होंगे वो कोई दानव थोड़ी है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात, इतना टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, भक्त कृपालु होते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भक्तों का बहुत ही प्रिय समुदाय होना चाहिए। जब तक हमारा आपस में प्रेम नहीं है, मिथो रति मिथो तुष्टि, तभी तो हृदय में संतुष्टि नहीं है, और तभी हमारी इंद्रदृष्टि में रुचि है। क्योंकि भक्ति में रुचि नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा, तो कहीं तो आनंद पाएंगे ना, तो फिर हम भौतिक जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं। जब भौतिक जगत में आनंद ढूंढ रहे हैं तो भौतिक जगत के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो रहे हैं। तो सारा श्लोक इसी पे है। साइमल्टेनियस जी का प्रश्न है कि जब किसी को हृदय देना है अपना, तो कई भक्तों के प्रति हमारी कुंठा भी है, द्वेष भी है, क्या वो सब भी बता देना चाहिए कि अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब नए सिरे से शुरू करें। साइमल्टेनियस, क्योंकि जब किसी को बता रहे हैं सब कुछ, ये भी बता दें कि मेरे हृदय में द्वेष है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं उसको खत्म करने का, क्योंकि जो सीनियर डिवोटी है वो हमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, हमारे में कोई शक्ति नहीं है। माता जी का प्रश्न है कि हमने बताया कि डिवोटीज की प्रेज करनी चाहिए, तो कई बार प्रेज चेहरे पे करनी चाहिए, पीछे से करनी चाहिए, सामने करें तो भक्त लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं हमारी प्रेज मत करो, हमारे गलतियां बताओ, तो क्या करें। अगर आपने ध्यान रूप सुना हो तो मैंने ये बोला कि भक्तों को प्रेज करना चाहिए, मैंने बोला भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रशंसा का मतलब अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन प्रेज से अलग है। प्रेज तो वोकल हो गया, है ना, गा रहे हैं हम के गुणगान, वो अलग बात है,
एप्रिसिएशन का अर्थ है कि आप हृदय से उसको मान रहे हैं कि क्या क्वालिटीज हैं, कितने अच्छे गुण हैं इस भक्त में, हृदय से मान रहे हैं। वाणी से तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो वाणी से अगर उसको आप उसके सामने कर रहे हैं बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, चुप हो जाइए, लेकिन गुणगान तो करिए, लेकिन हृदय से पहले मानिए, वो ज्यादा जरूरी है। और फिर हृदय से मानकर उसके अंदर जो गुण अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, बहुत अच्छे श्लोक बोलते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं हृदय से, तो फिर हम उन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें, उनकी सेवा करें, उनकी गुणों उन गुणों को अप्रिशिएट करें। एप्रिसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हर टाइम तो
नहीं जा सकते, पैर ढकने
वाली बात है। सॉक्स नहीं, पुरुष जी का प्रश्न है कि अगर हम पैंट शर्ट में हैं, ऑफिस से आए हैं, सॉक्स डाली हुई है, तो सॉक्स डाल के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? प्रेफरेबली नॉट, नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही सॉक्स डाल के हम टॉयलेट में जाते हैं, तो सॉक्स उतार कर और पैर धोकर फिर आना चाहिए। नहीं, पानी है ना हर
पैर तो हमारे वैसे ही रहेंगे।
अच्छा अच्छा, वो अलग बात है, वो अब तो हम आ ही सकते हैं ऐसे, लेकिन बताया गया कि बैठने की विधि ये है, ये तो पर्पजफुल हो गया ना, ऐसे दिखाना था, ये नहीं करना। अब तो पैरों पर चल ही रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसी प्रिकॉशंस ले रहे हैं फिर तो अच्छी बात। हाँ जी, अच्छा प्रश्न है आपको, तो ये कह रहे हैं कि हम आचरण तो कर नहीं पाते जो सुनते हैं, तो श्रवण करते रहें करते रहें करते रहें, जब हृदय की उथल पुथल शांत हो जाएगी तब हम आचरण करेंगे, है ना। तो दोनों ही बातें एक हैं, दोनों ही बातें एक हैं। श्रवण कोई क्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया है, श्रवण कोई एक्टिविटी नहीं है, ये प्रोसेस है। आपने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया, मैं श्रवण कर रहा हूं लेकिन आचरण नहीं कर पा रहा, और श्रवण करो और श्रवण करो और श्रवण करो और श्रवण करो, अल्टीमेटली आचरण तो करना ही पड़ेगा, आप बाध्य हो जाएंगे उसका आचरण करने के लिए। तभी तो प्रभुपाद कहते थे कि बार बार सुनो, शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा, मनुष्य पशु में क्या अंतर है, क्या अंतर है, सुनो 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 सुनो, जब तक आप इसको रियलाइज ना कर लो, है ना। तो आचरण में लाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो करना चाहिए, नहीं आचरण कर पा रहे और सुनो, मनन करना आवश्यक है, मनन करो, आचरण का प्रयास करो, नहीं कर पा रहा हूं और सुनो और मनन करो, तो निश्चित रूप से फिर आप आचरण कर पाओ। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़ने में हम केवल अपने साक्षात्कार पर निर्भर कर रहे हैं, अगर पढ़ते हैं निश्चित रूप से पढ़ना भी एक श्रवण का अंग है, लेकिन फिर भी साक्षात श्रवण करना ज्यादा शक्तिशाली बताया गया। निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी अगर हम श्रवण करते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, भक्तों के संघ की, निताई गॉड फेम आनंदे, ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू द श्री श्री गुरु एंड गौरांग।